ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
कृष्ण, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। भगवान श्री बलराम का जन्म दिवस है, उनकी आविर्भाव तिथि। बलराम और श्री कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को समझना आवश्यक है और कठिन है, ठीक उसी तरह से श्री बलराम जी के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जान लेता है और समझता है कि ये दिव्य हैं, साधारण भौतिक या लौकिक नहीं है, उसे यहां पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। वरन वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो जिस तरह से श्री कृष्ण के अस्तित्व, उनके गुणों को, उनके लीलाओं को समझना आसान है, उतना कठिन भी है। अगर भक्तों के संग में हम समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और अगर अपने मन से, अपने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम भ्रमित हो जाएंगे। श्री कृष्ण के बारे में कितने सारे भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां, लोग क्या नहीं समझते हैं श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि उन्होंने भक्तों के संग में आकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के प्रवचनों का श्रवण नहीं किया है और भक्ति में आती हुई परंपरा के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वो भगवान को जानते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बलराम जी को भी लोग पहचानते नहीं है। वो सोचते हैं कि बलराम जी भी श्री कृष्ण की तरह वृंदावन में एक साधारण ग्वाले थे और फिर द्वारका में आकर एक राजा बन गए, लेकिन वास्तव में दोनों श्री कृष्ण और बलराम भगवान है। अब दो भगवान कैसे हुए? भगवान तो एक है, लेकिन वह एक भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत करते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। ईश्वर तो कई है, ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर्स। ईश्वर कई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भी सब छोटे छोटे ईश्वर हैं। हमारे कारखाने चलाते, हमारे घर परिवार को चलाते, हम भी अपने अपने जगह में छोटे छोटे ईश्वर हैं, क्योंकि हम भी कोई चीजों को, व्यक्तियों को, पैसे को हम नियंत्रण में करते हैं। लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण, श्री कृष्ण परम ईश्वर है और वो सब कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम्। इसलिए उन्हें स्वयं भगवान कहते हैं। एते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उनसे अलग अलग जो उनके विस्तृत रूप निकलते हैं उनको अवतार कहते हैं। तो श्री कृष्ण अवतारी हैं। तो हालांकि भगवान एक हैं, वही श्री कृष्ण, फिर भी वही एक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं। इन रूपों में एक दृष्टि से देखा जाए तो भेद है और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भेद नहीं भी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अपने घर में रहता है, रात को, सुबह को अपने दफ्तर में जाता है, फिर शाम को कहीं क्लब में जाता है। अब तीन अलग अलग ठिकाने में वो आदमी है एक ही, लेकिन फिर भी तीनों जगहों में उसका व्यवहार, उसका बोलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, उसके कपड़े सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि क्या ये एक ही आदमी है या अलग आदमी है, तो आप क्या कहेंगे? आदमी तो एक ही है, लेकिन फिर भी उसके पोशाक अलग अलग हैं। घर में वो पजामा कुर्ता में रहेगा, जब सूट में, जब दफ्तर में जाएगा तो हो सकता है सूट टाई में जाएगा, और जब क्लब में जाएगा या कोई सैर करने जाएगा तो फिर साधारण कोई पैंट शर्ट पहन के जाएगा। तो पोशाक तो अलग अलग है, उसका जिस प्रकार से उसकी भावना है, जिस प्रकार से बात करता है आराम से सैर करते हुए, वैसे वो दफ्तर में नहीं लगता। दफ्तर में हमेशा चिंतित रहता है कितना पैसा आया, कितना पैसा जाएगा, और घर में भी रहता है तो उसका व्यवहार अलग रहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो अलग व्यक्ति है, क्योंकि अलग भावना में है, वो अलग भाव में अपने आप को अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान हैं एक, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी कभी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए, अलग अलग भावनाओं को स्वीकार करने के लिए। जब उनको क्रोध प्रकट करना होता है, ऐसा क्रोध जो कि शायद ब्रह्मांड भर में दिखाई न पड़े, तो नरसिंह देव का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे जैसे परिस्थिति, वैसे उपयुक्त रूप भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यह है भगवान शब्द का तात्पर्य, अर्थात भगवान कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कोई कार्य है जो कि भगवान नहीं कर सकते, तो वो भगवान कैसे होंगे? तो भगवान अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित कर देते हैं, और ये अलग अलग रूप भी भगवान के ही रूप हैं, लेकिन दिखने में थोड़े अलग होते हैं। तो ये सारे रूप अवतार कहलाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अवतारी, क्योंकि ये सारे अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहते हैं। तो शास्त्र में बताया जाता है कि ये आदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने आप को विस्तृत करते हैं बलराम के रूप में। वृंदावन में जब श्री कृष्ण प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो बलराम जी उनके बड़े भाई हुए और कृष्ण छोटे भाई। तो लीला में तो छोटे और बड़े भाई हुए, लेकिन तत्व तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं और बलराम जी उनके पहले विस्तृत रूप हैं। और फिर बलराम जी से अन्य सारे अवतार निकलते हैं, चाहे वो वामन देव हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो संकर्षण हो, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये सारे अनंत अवतार बलराम जी से आते हैं और बलराम जी श्री कृष्ण से आते हैं। तो पहले दो पुरुष ये सारे सृष्टि के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और आध्यात्मिक जगत के, वो है कृष्ण और बलराम। बलराम और कृष्ण दोनों एक हैं, और उनमें अंतर रूप में केवल इतना है कि कृष्ण सांवले रंग के हैं और बलराम गोरे हैं। बलराम हल धारण करते हैं क्योंकि वो कृषि के प्रतीक हैं, कृषि के रक्षा करने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराने ले जाते हैं, और वो गो रक्षा के प्रतीक हैं। कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था के तीन खंभे ये हैं, कृषि, गो रक्षा और वाणिज्य। और इनमें से भगवान श्री कृष्ण ने गो रक्षा को संभाला है और बलराम जी ने कृषि को संभाल लिया है। और कृष्ण भगवान पीताम्बर पहनते हैं, स्वर्ण रंग की धोती कपड़े पहनते हैं, लेकिन बलराम जी गोरे होते हुए वो नील रंग के कपड़े पहनते हैं। बस अंतर इतना ही है, नहीं तो दोनों ही भगवान, लेकिन मूल भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार से बलराम को भी समझना आवश्यक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों में। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने धाम में रहकर अपनी लीला करते हैं और सारे ब्रह्मांडों को संभालने का काम बलराम जी को देते हैं। फिर बलराम जी अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तृत करके जैसे जैसे आवश्यक हो ऐसे रूप में विस्तृत करके ब्रह्मांडों का काम वो चला देते हैं। उधर श्री कृष्ण केवल बांसुरी बजाकर गायों को चराते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं और ऐसे अलग अलग लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। बलराम जी, जैसे कि बलराम शब्द से ही जाहिर होता है, वो बल के उगम स्थान है, शक्ति। लेकिन कैसी शक्ति? केवल शारीरिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति। अगर हमें आध्यात्मिक बल चाहिए तो हमें बलराम जी की कृपा चाहिए। जिस प्रकार से भौतिक या शारीरिक बल के बिना हम कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकते इस संसार में, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक बल के बिना हम आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें प्रगति करना है, दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो हमें आध्यात्मिक बल चाहिए और इसके लिए बलराम जी की कृपा हमें चाहिए। भौतिक बल ये शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। शरीर के साथ तो क्या, बुढ़ापे में भी चले जाता है, बीमारी में भी चले जाता है, कब तक ये शारीरिक बल हमारे साथ में रहेगा? लेकिन आध्यात्मिक बल हमेशा हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक बल आत्मा से संबंधित है और आत्मा अमर है। जब शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, मृत्यु भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। तो अगर हमें इसी जीवन में आध्यात्मिक बल प्राप्त करके हमारे मनुष्य जीवन को सफल करना है तो हमें बलराम जी की कृपा चाहिए। और इसलिए बलराम जी भगवान के कृपालु रूप हैं। अगर भगवान को जानना है तो बलराम जी के पास जाना है, फिर वो हमें भगवान के पास ले जाते हैं। इसलिए वो भगवान के भक्तों के संरक्षक भी हैं। भगवान के भक्त जब कोई भी तकलीफ में आते हैं तो बलराम जी आगे रहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम, इन दोनों का तत्व समझना बड़ा आवश्यक है। बलराम को अग्रज कहते हैं क्योंकि कृष्ण के पहले उन्होंने जन्म लिया। लेकिन पहले जन्म लिया हो या बाद में, ये केवल एक लीला है। वास्तव में बलराम जी ने पहले जन्म क्यों लिया, इसको समझने के लिए हमें रामलीला में जाना चाहिए। वैसे जब भगवान श्री रामचंद्र इस भौतिक संसार में प्रकट हुए तो उस समय उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे और लक्ष्मण हमेशा चिंता में रहते थे कि यहां पर अभी मुझे हर बात श्री राम की माननी पड़ती है, जैसे मेरा मन कहे वैसे मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता हूं। और खास करके जब वनवास में जाने का आदेश मिला प्रभु राम को, तो लक्ष्मण तो बहुत ही क्रोधित हो गए। यहां तक कि वो श्री राम से कहने लगे कि आपका वन में जाना ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बल्कि धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म के अनुसार आप सबसे वरिष्ठ पुत्र हैं सम्राट के, इसलिए आपको ही यहां पर राज करना चाहिए। और हमारे पिता जो हैं, इन्होंने अधर्म का कार्य किया है, केवल एक स्त्री के वश में आकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पिता फिर भी जोर करते हैं कि आपको जाना है तो मैं खुद मेरी तलवार लेकर मैं उनकी हत्या कर दूंगा। आप बबूले हो गए थे लक्ष्मण, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने उनको संभाल लिया, बहुत सांत्वना दी और कहने लगे, प्रभु अब हमारे पिता दशरथ महाराज ने हमें ये जो आदेश दिया है, काम वासना से वश के वश में होकर नहीं दिया है, वो धर्म परायण राजा है, उन्होंने हमारी माता कैकेयी को वरदान दिए थे और इसलिए अपने वचन से बद्ध है, और मैं भी एक धर्मपरायण पुत्र हूं तो मुझे मेरे पिता का वचन बिल्कुल अवश्य निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण भी थोड़े निराश हुए, लेकिन क्या करते, प्रभु राम तो बड़े भाई थे और उसके बाद में भी कई बार वनवास के समय भी लक्ष्मण कई चीजें करना चाहते थे, अलग अलग तरह से वो श्री राम की सेवा करना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने उनकी बात नहीं मानी। तो ऐसे जब होने लगा तो लक्ष्मण जी ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया, इस लीला में जो मुझे सेवा करनी है मैं कर लूंगा, लेकिन अगली बार मैं बड़ा भाई होकर आऊंगा ताकि मैं जो कहूंगा वो चलेगा और मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा अच्छी ढंग से कर पाऊंगा। तो यहां कोई अहंकार की बात नहीं थी, केवल ये एक प्रेम भक्ति की भावना व्यक्त कर रहे थे लक्ष्मण जी, क्योंकि वो इतने अच्छे ढंग से सेवा करना चाहते थे भगवान के और भगवान उनको रोक रहे थे, नहीं ऐसे सेवा नहीं करना, ऐसे मत करना। तो लक्ष्मण ने सोचा कि हम जब बड़े भाई बनेंगे तो जी भर के भगवान की सेवा कर पाएंगे, जैसे हमारा मन कहे वैसे हम सेवा कर पाएंगे। तो अगले अवतार में वही लक्ष्मण बलराम के रूप में आए और वही श्री राम कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से बलराम जी जो कि बड़े भाई थे, वे कभी कभार श्री कृष्ण को डांटा करते थे, कभी कभी कृष्ण के संरक्षण के लिए उनके माता पिता उनको भेज देते थे, क्योंकि बलराम जी का शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था और श्री कृष्ण नाजुक और कोमल थे, इसलिए माता यशोदा और नंद महाराज हमेशा बलराम जी को कहते थे जब श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए वन में जाते थे कि देखो बलराम, तुम्हें श्री कृष्ण के हमेशा साथ में रहना चाहिए, कभी भी उसका संग छोड़ना नहीं। यहां वृंदावन में बहुत सारे खतरे हैं, हर दिन कोई ना कोई असुर आते हैं, हमला करते हैं, तो सावधान रहना, श्री कृष्ण का संरक्षण करना अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से बलराम जी बड़े भाई थे और इसलिए जी भर के उन्होंने सेवा की श्री कृष्ण की। लेकिन बड़े भाई या छोटे भाई, दोनों तो हैं भगवान। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है, उसी तरह से बलराम जी का जन्म भी दिव्य ही है, इसलिए इसको जन्म नहीं कहा जाता, इसको आविर्भाव या प्राकट्य कहा जाता है। जिस प्रकार से सूरज का उदय जब होता है तो हम ये नहीं कहते कि सूरज का जन्म हुआ, हम केवल कहते हैं कि सूरज प्रकट हुआ हमारे दृष्टि के सामने। तो ठीक उसी तरह से बलराम जी भी जब इस संसार में प्रकट हुए तो उनका जन्म भी ऐसे ही दिव्य था। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में तो आप सब जानते हैं, बचपन से ही शायद आप ये कथा सुनते आए होंगे कि किस प्रकार से क्रूर और दुष्ट राजा कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और फिर देवकी के 6 पुत्रों को लगातार उनकी हत्या कर दी बड़े क्रूर ढंग से। जब 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो उस समय कंस भी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, और कंस ने अपने अत्याचार को बढ़ा दिया, सारे यदुकुल के जो राजा थे उनके प्रति अत्याचार बढ़ाकर जब यदुकुल के राजा इधर उधर जब भागने लगे तो उस समय श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अपने धाम में आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी सेविका योग माया को बुलाया और कहने लगे कि हे योग माया देवी, अब आपका भौतिक संसार में प्रकट होना आवश्यक है, अब मेरा ही अंश अनंत शेष देवकी के गर्भ में अभी स्थित है, देवकी के 7वें पुत्र के रूप में, तो आप भी वृंदावन में जाओ जहां की वसुदेव की एक पत्नी रानी रोहिणी देवी नंद महाराज के संरक्षण में है, और मेरे जो अंश है अनंत शेष उनको स्थानांतरित करना देवकी देवी के गर्भ से रोहिणी देवी के गर्भ में, और इस प्रकार से मैं 8वां गर्भ बनकर देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा और फिर मैं जन्म लूंगा, उधर तुम वृंदावन में जन्म ले जाना यशोदा मैया के पुत्री के रूप में, और इस प्रकार से जब तुम जन्म लोगे तो सारे विश्व भर में लोग तुम्हारी उपासना करेंगे, अलग अलग नामों से तुम जानी जाओगी, कोई लोग तुम्हें अंबिका बुलाएंगे, कोई चंडी, कोई ईशानी, कोई नारायणी, इस तरह से। ये सुनकर योग माया ने भगवान की प्रदक्षिणा की और कहा जैसे आपकी इच्छा। और फिर देवकी के गर्भ में जो अनंत शेष थे, योग माया ने अपनी शक्ति से उनको स्थानांतरित करके उधर वृंदावन में रोहिणी जी के गर्भ में स्थित कर दिया। और यहां कंस के कारागार में सारे जो लोग थे, सैनिक इत्यादि थे, उन्होंने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, बच्चे का गर्भपात हुआ। और कंस के जब पास खबर पहुंची तो कंस सोचा ठीक है, खतरा तो मुझे आठवें पुत्र से है, तो कोई बात नहीं। उधर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और फिर आप कथा तो जानते हैं और आगे की कथा जन्माष्टमी में सुनेंगे। लेकिन कहने की बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण योग माया से कह दिया था कि ये जो रोहिणी के पुत्र होंगे उनका नाम होगा बलदेव या संकर्षण या बलभद्र, लोग इसे राम भी कहेंगे। उधर जब बलराम जी का जन्म हुआ तो ये एक बड़ी अद्भुत बात थी। क्यों? क्योंकि जब से रोहिणी देवी गर्भवती हुई, बलराम जी का जन्म उसके केवल 5 दिन बाद हुआ। तो नंद महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कैसे हो गया, गर्भवती होने के केवल 5 दिन बाद बच्चे का जन्म। लेकिन फिर भी बड़े धूमधाम से उन्होंने जन्मदिवस मनाया बलराम जी का, और बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सब लोग आए, सारे ब्रजवासी भी वहां आए, धूमधाम से बहुत कीर्तन हुआ और हंसी मजाक हुआ, संगीत के वाद्य बज रहे थे और सबको उन्होंने भंडारा खिलाया बड़े प्रेम से। स्वयं यशोदा मैया जाकर सबको खिला रही थी। उधर रोहिणी देवी बलराम को साथ में लेकर बड़े आनंद से, प्रफुल्लित मन से सबको बलराम जी का दर्शन दिला रही थी। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, ब्रह्मांड के कोने कोने से ऋषि मुनि आए, क्योंकि वो जान चुके थे कि अनंत शेष स्वयं अब रोहिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। नारद जी आए, वेद व्यास जी, देवल, असित, वशिष्ठ इत्यादि, ये सारे ऋषि मुनिगण जब आए वहां पर तो नंद महाराज ने उनका यथा जैसे उचित है वैसे स्वागत किया, उनके चरणों को धोया, उनको गाय में दान दी। बताया जाता है कि नंद महाराज ने उस दिन 1,00,000 गाय दान दी सारे ब्राह्मणों को। और उसके बाद में नंद महाराज ने ऋषियों से पूछा कि ये बालक कौन है, इतना अद्भुत सौंदर्य और इसका तेज, ये कोई साधारण बालक मुझे नहीं लगता है। तो वेद व्यास, जो कि सारे वेद उपनिषद पुराणों के रचयिता हैं, वो कहने लगे हे नंद बाबा, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप नहीं जानते कि आपका बच्चा कौन है, आपका बच्चा तो साक्षात अनंत शेष है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। पहले इसका जन्म देवकी के गर्भ में हुआ, लेकिन भगवान के आज्ञा के अनुसार योग माया ने इसे स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में, इसलिए केवल 5 दिन के बाद इसका जन्म हुआ है। और ये समझ लेना आप कि आपके घर में बड़े सौभाग्य का उदय हुआ है, बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब यहां आए हैं, तो कृपा करके उनका दर्शन हमें दिलाइए। तो वेद व्यास और अन्य ऋषियों ने बलराम जी का दर्शन किया, उनकी परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और फिर वहां से बलराम जी का गुणगान करते हुए वहां से निकल पड़े। उधर नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बुलाया, जो कि उनके पुरोहित थे, और फिर वहां नामकरण का संस्कार कराया गया। लेकिन थोड़े बाद में कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण संस्कार एक साथ में हुआ, और वो भी छुपके, गौशाला के भीतर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कंस को पता चले कि यहां दो बच्चों का जन्म हुआ है। और जब बलराम का नाम रखा गया तो गर्ग मुनि ने कहा कि इसका नाम होगा बलदेव, क्योंकि इसका शारीरिक बल बहुत अद्भुत होगा। इसका और एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि इसने आपके कुल को और नंद और वसुदेव के कुल को दोनों को मिला दिया है। ये कैसे? इसका इतिहास इस प्रकार से है कि वसुदेव जो है वो शूरसेन के पुत्र थे, शूरसेन तो क्षत्रिय थे, और वसुदेव की माता वो भी क्षत्रिय थी, महारानी थी, लेकिन जैसे कि पहले क्षत्रियों में हुआ करता था, उनकी कई रानियां हुआ करती थी, और ये जरूरी नहीं था कि सारे रानियां क्षत्रिय ही हों, कभी कभी वैश्य या शूद्र भी हुआ करती थी। तो और एक उनकी रानी थी जो कि वैश्य थी। उस वैश्य रानी से नंद महाराज का जन्म हुआ, इसलिए नंद महाराज एक वैश्य परंपरा में आगे चल गए और वसुदेव क्षत्रिय रहे। आगे चलकर वसुदेव ने क्षत्रिय रानियों से विवाह किया, उधर नंद महाराज ने एक वैश्य महिला से विवाह कर दिया। इसलिए दोनों वैसे हैं शूरसेन के पुत्र, लेकिन एक बने वैश्य और दूसरे बने क्षत्रिय, और बलराम के जन्म के साथ में दोनों वंशों को उन्होंने मिला दिया, एक कर दिया। तो इस प्रकार से बलराम या बलदेव ये नाम गर्ग मुनि ने रखा। उन्होंने कहा इनका नाम राम भी होगा, क्योंकि राम इतना आनंद देगा वृंदावन के वासियों को, और ये कैसा आनंद होगा, रमंते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, ये आध्यात्मिक आनंद होगा, दिव्य आनंद होगा, इसलिए इसका नाम राम भी रखा जाएगा। तो राम शब्द जो है वो बलराम को संबोधित करता है, परशुराम जी को संबोधित करता है, और अयोध्या के श्री राम को भी संबोधित करता है। तो इस प्रकार से बलराम जी का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुए, और फिर आगे चल के श्री कृष्ण के साथ में वृंदावन में कई सुंदर सुंदर लीलाएं वो करते रहे, और आगे चलकर जब वो बड़े हुए, पौगंड अवस्था से पार होकर धीरे धीरे किशोर अवस्था में प्रवेश करने जा रहे थे, तो उस समय वहां कंस बड़े चिंतित थे मथुरा में। क्यों चिंतित थे? क्योंकि दिन ब दिन वो रोज कोई न किसी न किसी असुर को भेज रहे थे कि जाओ कृष्ण और बलराम को खत्म कर दो। बताया जाता है कि हर रोज दोपहर के भोजन के पहले श्री कृष्ण एक या दो असुरों का वध कर देते थे। उनकी दिनचर्या में एक सेट कार्यक्रम था, हमेशा कोई न कोई दो तो असुर आते ही थे, और बड़े आसानी से आनंद से वीर रस का आस्वादन करते हुए कृष्ण या बलराम या कभी दोनों मिलकर इन असुरों का वध करते थे। और ये सारे असुर कंस के साथी थे। एक के बाद एक जब इनके साथियों का वध होते गया तो कंस सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब कोई तरकीब निकालनी चाहिए। तो कंस ने फिर अपने साथियों चाणूर और मुष्टिक को बुलाया और कहने लगे कि देखो अभी ये कृष्ण और बलराम की हरकतें अभी हद से बाहर बढ़ रही हैं, अभी कुछ हमें करना चाहिए। अब ऐसे करो, मैं कृष्ण और बलराम को यहां बुलाने वाला हूं, एक धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान हम संपन्न करेंगे, और उस दौरान एक कुश्ती की प्रतियोगिता भी रखेंगे। आप दोनों तो बड़े प्रवीण कुश्ती करने वाले हो, बड़े पहलवान हो, आपको देखकर मात्र दूसरे कुश्ती करने वाले पहलवान कांपते हैं, तो आप इनके साथ में कुश्ती करोगे, उनको खत्म कर डालोगे। लेकिन इसके पहले मैं कुवलपीड नाम के पागल हाथी को वहां दरवाजे पर रखूंगा, जो कि कृष्ण और बलराम को अपने पैरों तले कुचला देगा, और अगर वो बच पाए तो आपके साथ कुश्ती करते फिर उसके बाद में बचेंगे नहीं। तो फिर कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा कि अक्रूर, आप तो हमारे शुभचिंतक हैं, आप जैसे विद्वान भला यहां कौन हो सकता है? क्योंकि कंस कूटनीति में राजनीति में बड़ा निपुण था, तो जानता था किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करना है अपना काम करने के लिए। तो अक्रूर की बहुत प्रशंसा की और फिर कहने लगे, देखो अक्रूर, मेरी योजना ऐसी है, मैं चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम को यहां बुलाया जाए इस धनुर्यज्ञ में, और यहां पे कुश्ती की स्पर्धा जो होगी इसमें उनको शामिल होना चाहिए, और जब कुवलपीड से अगर वो बच गए तो चाणूर और मुष्टिक के हाथों से तो अवश्य नहीं बचेंगे, और जब मैं कृष्ण और बलराम को इस तरह से खत्म कर दूंगा, फिर आगे चल के मैं वसुदेव और अन्य जो नंद महाराज इत्यादि ये सारे जो लोग हैं इनके वंश के सभी को मैं खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में मेरे पिता उग्रसेन हैं, वो इस राज के बड़े लोभी हैं, जो कि मेरा राज है, तो उनको खत्म करूंगा। उनके भाई देवक, जिनकी पुत्री है देवकी, उनको भी मैं खत्म कर डालूंगा। और फिर मेरे मित्रों के सहित मैं सारे पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा। मेरे मित्र बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे कि जरासंध, जैसे कि द्विविद, जैसे कि नरकासुर, भौमासुर, ये सब बड़े बड़े शूरवीर क्षत्रिय हैं, ये मेरा साथ देने के लिए आए हैं। तो ये मेरी योजना है। तो अक्रूर ने बात सुन ली और अक्रूर कहने लगे कि आपकी योजना तो बड़ी अच्छी है आपके दुखों का निवारण करने के लिए, लेकिन सुख दुख हमारे किस्मत के हिसाब से आता है और जाता है। हम योजनाएं जो भी बनाएं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये योजना सफल होएंगी। इसलिए हमारी भलाई इसमें है कि हम सुख दुख में हमेशा हम स्थिर रहें, एक बुद्धि से सुख दुख को देखें और ज्यादा प्रयास न करें हमारे दुखों को निवारण करने के लिए, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो हम करेंगे। तो अक्रूर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे, महाभागवत। उनको एक मौका मिल गया, हालांकि जिस कारण के लिए कृष्ण और बलराम को यहां मथुरा में बुलाना था वो अच्छा कारण नहीं था। कंस उनको मारना चाहता था, लेकिन फिर भी अक्रूर सोच रहे थे मेरे लिए अच्छा हो गया, कम से कम मुझे कृष्ण भगवान का, बलराम जी का दर्शन तो होगा, वहां जाके उनका संग मिलेगा और फिर यहां आकर वो कंस का अवश्य वध करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंस इनकी शक्ति को नहीं जानता है। इस प्रकार से अक्रूर अपने रथ पर बैठकर चले मथुरा से वृंदावन, और रास्ते में भी सतत कृष्ण का स्मरण ही करने लगे और बलराम का। आखिर वृंदावन पहुंच गए। ये काफी लंबी लीला है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अक्रूर का स्वागत किया वहां वृंदावन में ब्रजवासियों ने, और फिर गोपियों ने जब सुना कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को यहां से ले जाने वाले हैं तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम को जाना था, उनको आगे मथुरा लीला करनी थी, उसके आगे द्वारका लीला और फिर भगवत गीता बोलना था कृष्ण भगवान को, तो बहुत कुछ काम आगे पड़ा था कृष्ण भगवान के लिए। तो हालांकि वो चाहते थे वृंदावन में रहना, फिर भी उनको आगे जाना पड़ा। और उधर लौटते वक्त अक्रूर अपने रथ पर बिठाकर दोनों कृष्ण बलराम को मथुरा की ओर ले चले। मन की गति से रथ चल रहा था बहुत तेज, और थोड़े ही समय बाद रथ जमुना जी के तट पर पहुंच गया। तीनों को प्यास लगी थी, सोचा कि थोड़ा आराम कर दिया जाए, और अक्रूर उतरे, कृष्ण बलराम भी उतरे। कृष्ण बलराम ने जाकर जमुना जी का शीतल जल का पान किया और फिर थोड़ा फ्रेश होकर फिर से अपने रथ बजाकर बैठ गए। उधर अक्रूर जी भी जल का पान करने के लिए यमुना के तट पर आए, और जैसे आए उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम जल में हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि अभी अभी तो जल पान करके कृष्ण बलराम वापस लौट गए और रथ में तो बैठे थे, उनको रथ में छोड़कर तो मैं यहां आया, लेकिन यहां मैं कृष्ण बलराम को देख रहा हूं, ये कैसे हो गया। तो फिर से वो रथ के पीछे गए और देखा कि कृष्ण बलराम तो वहां बैठे हैं, तो अरे ये क्या हो गया, दोनों जगह में रथ के ऊपर और जल में कृष्ण बलराम दोनों साथ में हैं, ये कैसे संभव। तो फिर से जल की ओर गए, और इस बार जब जल की ओर गए, जल में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने सामने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने देखा कि अनंत शेष अपने सफेद दूध के समान सफेद फणों सहित वो एक शैया बने हुए हैं, और उनके ऊपर वही श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में विश्राम कर रहे हैं, और अनंत शेष का रूप भी बड़ा सुंदर था, सफेद दूध की तरह रंग, और उन्होंने वस्त्र भी पहने थे नील रंग के, सुंदर सुनन सोने के मुकुट और अन्य आभूषणों से उनका श्रृंगार किया हुआ था, और अनंत शेष की पूजा करने के लिए, अर्चा करने के लिए भी नाना प्रकार के ऋषि मुनि वहां आए थे, गंधर्व लोक से, सिद्ध लोक से, विद्याधर लोक से, सारे ऊपर लोक के निवासी आए थे, अनंत शीश का गुणगान कर रहे थे। और फिर वहां ऊपर देखा, चतुर्भुज वहां कृष्ण बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं अनंत शेष की शैया पर, नील रंग, श्याम रंग, बड़ा सुंदर कमल नयन, और उनके बाल भी बड़े काले घुंघराले, और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स पीतांबर धारण किया हुआ था, गले में वनमाला और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण, और उनके इर्द गिर्द सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, और जैसे कि चार कुमार और बड़े बड़े देवता आए थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, और उनकी सारी शक्तियां जैसे कि श्री भू इत्यादि, वो सब वहां उपस्थित थे और भगवान की नाना प्रकार से सेवा कर रहे थे। अब जब अक्रूर ने ये देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, केवल देखते रह गए बड़े बड़े आंखों से कि मैं क्या देख रहा हूं। और इनको जब देखा तो सुंदर प्रार्थना स्तुतियां अर्पण करने लगे, और वह समझ गए कि कृष्ण बलराम ही वास्तव में ये हैं विष्णु और अनंत शेष। विष्णु कृष्ण के विस्तृत रूप हैं और अनंत शेष बलराम जी के विस्तृत रूप हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर ने जब भी देखा, प्रार्थना अर्पण किए, और तुरंत फिर कृष्ण बलराम अदृश्य हो गए, उज्जल हो गए, और फिर लौट कर गए अक्रूर कृष्ण बलराम के पास रथ के ऊपर, और वहां दोनों आराम से मुस्कुराते हुए बैठे थे कृष्ण बलराम। और कृष्ण ने पूछा, अक्रूर जी क्या आपने कोई जल में या आकाश में या जमीन पर कोई अद्भुत दृश्य देखा? आपके चेहरे से ऐसे लगता है कि वास्तव में आपने कोई अद्भुत दृश्य अवश्य देखा होगा। थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे कृष्ण अक्रूर जी का। तो अक्रूर जी ने कहा कि हे प्रभु, जो भी यहां संसार में अद्भुत चीजें हैं, जमीन पर, जल में, आकाश में, वो सब आपके भीतर हैं, आपकी शक्तियां हैं। तो जब हम आपका दर्शन करते हैं तो और अद्भुत चीज रहने के लिए क्या रह गई? इसलिए आपका दर्शन करने मात्र से ही हम संतुष्ट हैं, और यही सबसे बड़ा अद्भुत दृश्य है हमारे लिए। तो उस समय अक्रूर भी समझ गए कि वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम कौन है। तो बलराम जी ने भी अपना स्वरूप प्रकट कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि हे अर्जुन, मैं जब मनुष्य समाज में अवतार लेता हूं तो अज्ञानवश होकर जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो मुझे भी एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं, क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते, परम भावम अजानंतो, और वो ये भी नहीं जानते कि मैं सारे प्राणियों का महेश्वर हूं, उनका स्वामी हूं, मैं ही आदि देव हूं, इस बात को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कृष्ण बीच बीच में अपने असली स्वरूप को प्रकट करते हैं और ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं, ऐसे विशेष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि जानने वाले लोगों को, अकलमंद लोगों को यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में ये कौन है। तो इस प्रकार से बलराम जी भी ऐसे बीच बीच में अद्भुत लीलाएं प्रकट करते हैं, ताकि श्रवण करने वाले लोग, सुनने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, देखने वाले लोग समझ लें कि ये बलराम भी कोई साधारण आदमी नहीं है। इस प्रकार से बलराम जी ने भी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं किए। उनके विवाह की लीला भी बड़ी सुंदर है सुनने के लिए। भगवान के हर एक कार्य, हर एक लीला सुनने में बड़ा आनंददायक है, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। संसार में विवाहों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे विवाहों का वर्णन सुनने से हमारे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। लेकिन भगवान के विवाह का जब हम कार्यक्रम की हम वर्णन सुनते हैं तो इससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसलिए ऐसे विवाह का वर्णन सन्यासी और ब्रह्मचारी भी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन संसार के विवाह का वर्णन सन्यासी ब्रह्मचारी और भक्त सुनना नहीं पसंद नहीं करते। तो हुआ ये कि बहुत बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात, वैवस्वत मनु, उनके कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था शर्याति। शर्याति राजा के भी कई पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम था आनर्त। आनर्त के 100 पुत्र थे और कई पुत्र थे, उनमें से एक थे रेवत राजा। ये रेवत राजा ने वास्तव में सागर के नीचे कुशस्थली नाम का एक शहर बनाया। वो सब कला विज्ञान उस जमाने में था। आजकल हम ऊपर जमीन पर भी शहर बनाना कितना कठिन है, तो भले हम जल के भीतर जाके कैसे बनाएंगे। तो कुशस्थली नाम का शहर रेवत राजा ने बनाया। रेवत राजा के 100 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे ककुद्मी, और ककुद्मी राजा की कन्या थी पुत्री, जिसका नाम था रेवती। तो जब विवाह का समय आ गया तो जैसे हर एक माता पिता सोचते रहते हैं कि अब लड़की का विवाह कब किया जाए, किससे किया जाए, कैसे किया जाए, तो राजा ककुद्मी भी कोई योग्य वर अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। तो सोचा कि योग्य वर कौन हो सकता है, मुझे थोड़ी सलाह लेनी चाहिए, और सलाह देने के लिए तो आदि कवि ब्रह्मा जी के पास ही जाना चाहिए। उस जमाने में अलग अलग लोकों में आना जाना हुआ करता था, आजकल कलयुग में तो यह संभव नहीं है। तो ककुद्मी राजा ने रेवती को साथ में लेकर वो ब्रह्मलोक चले गए, और जब ब्रह्मलोक गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के दरबार में, तो ब्रह्मा जी कोई संगीत के कार्यक्रम में मग्न थे, तो चंद मिनट वहां पर बैठे वो। और जब संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ और वो बाहर आए, अपने दरबार में बैठे, राजा ककुद्मी को देखा, पूछा कि क्या आदेश है, क्या इच्छा है आपकी, क्यों आए हैं। जब राजा ककुद्मी ने बताया कि मैं सलाह लेने आया हूं आपसे कि मेरे बेटे के लिए कौन सा वर योग्य होगा, ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो हंस पड़े, जोर से हंस पड़े, और कहने लगे कि अरे राजा ककुद्मी, आपने अवश्य आपके मन में कई ऐसे राजकुमारों को मन में रखा होगा कि ये शायद हमारे कन्या के लिए योग्य वर हो सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में आपने सोचा है उनको मरकर कितने करोड़ों साल हो चुके होंगे पृथ्वी लोक के ऊपर, क्योंकि यहां पे ब्रह्मलोक में एक क्षण जो है वो लाखों साल के बराबर है पृथ्वी लोक के ऊपर। इसलिए जब तक तुम यहां आए हो और तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, तो तब तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं पृथ्वी लोक के ऊपर। अब एक चतुर्युग मतलब क्या है, एक चतुर्युग मतलब 4 युग लगातार जब बीतते हैं, कलयुग, त्रेता युग, पहले सबसे पहले सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कली, 40 लाख साल से भी ऊपर है एक चतुर्युग, और ये चतुर्युग बार बार होते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने राजा ककुद्मी को कहा कि 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, अब कोई आपके नाम को भी पहचानेगा नहीं, आपका वंश का वंश ही सब खत्म हो चुका होगा। तो खैर ये बड़ी विकट परिस्थिति आपके लिए, बड़ी समस्या है, तो ठीक है मैं समाधान भी कराता हूं इसका, आप सीधे जाना द्वारका में, वहां पे स्वयं अनंत शेष भगवान बलराम जी हैं। बलराम जी की कृपा से सारे ब्रह्मांड में कल्याण और शांति हो सकती है। बलराम जी के पास जाइए, ये आपके कन्या के लिए योग्य वर है। तो राजा ककुद्मी ने बात सुन ली और फिर वो गए द्वारका में। उधर द्वारका में बलराम जी के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा, बलराम जी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वास्तव में जैसे कृष्ण और रुक्मिणी हैं, और कृष्ण और अन्य जो उनकी पठरानियां हैं द्वारका में, या तो फिर वृंदावन में जो कृष्ण और अन्य गोपियां हैं, इनका जो संबंध है वो शाश्वत है, नित्य है, जैसे कि नारायण और लक्ष्मी, जैसे कि राम और सीता, ये जो जोड़ियां हैं ये नित्य जोड़ियां हैं, शाश्वत जोड़ियां हैं, भगवान के धाम में ये शाश्वत रूप में हैं। लेकिन जब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं और अलग अलग तरह के लीला प्रकट करते हैं तो ये भी एक लीला हो जाती है कि प्रभु रामचंद्र सीता को मिलते हैं, स्वयंवर में जाते हैं और उनको जीत लेते हैं। कृष्ण भगवान भी स्वयंवर में गए थे राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के स्वयंवर में, और राक्षस पद्धति से वो रुक्मिणी देवी को हरण करकर वो ले गए थे। क्षत्रियों के बीच में ऐसे विवाह करने की अनुमति थी। जब कोई क्षत्रिय राजकुमार जाकर स्वयंवर के स्थान से जबरदस्ती किसी राजकुमारी को उठाकर ले जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। राक्षस विवाह का यह मतलब नहीं कि दोनों राक्षस थे, लेकिन जिस पद्धति से वो किया जाता था उसको नाम दिया जाता था। वैसे 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे अलग अलग तरह से, और क्षत्रियों में अक्सर इस प्रकार का विवाह भी हुआ करता था। तो कृष्ण और रुक्मिणी भी, उनका संबंध नित्य है, शाश्वत है उनके धाम में, आध्यात्मिक जगत में। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी एक बलराम जी की लीला थी। और फिर बलराम जी ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा समस्या एक है और वो ये है कि आप तो पुराने युग के हो इसलिए आप तो बहुत लंबे हो, और रेवती तो बहुत ऊंची थी क्योंकि वो सत्य त्रेता युग की थी, बहुत लंबी, और बलराम जी केवल द्वापर के थे। कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो द्वापर युग के लोग बहुत लंबे, 7, 7.5, 8, 9 फुट की। द्वापर युग में कोई बड़ी बात नहीं थी, आजकल कोई 6 फुट भी होता है तो लोग उसे बहुत लंबा मानते हैं। तो बलराम जी इतने लंबे थे, लेकिन फिर भी उनकी तुलना से रेवती देवी तो और भी लंबी थी। तो बलराम ने सोचा मेरे से अगर पत्नी इतनी ज्यादा लंबी है कि मुझे सिर ऊपर करके देखना पड़े ये तो बड़ी समस्या होगी, तो क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने अपना हल लिया और अपना हाथ लंबा करके रेवती के कंधे तक पहुंचाया और रेवती को नीचे खींच दिया, और फिर रेवती की ऊंचाई बिल्कुल कम हो गई, बलराम जी से भी कम हो गई। और फिर बलराम जी ने कहा बहुत अच्छा, अब विवाह हो सकता है, नहीं तो मैं हार कैसे पहनाऊंगा अपने पत्नी को, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इस प्रकार से बलराम जी का विवाह हो गया। इधर द्वारका में यदुवंश के राजा और यदुकुल के लोग कृष्ण और बलराम के संग में बड़े खुश थे, सुंदर लीला करते थे उनके संग में, रोज कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ करता था और उनके कृष्ण भगवान के 16,108 पठरानियां थीं और हर एक रानी से 10 पुत्र हुए और फिर उन 10 पुत्रों से भी और पुत्र हुए। तो इन सबका शादी कराना था। देखिए यहाँ संसार में एक लड़के एक लड़की हो शादी के लिए कितना परेशानी में लोग हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे और 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र, इन सबका विवाह कराना था। और फिर इन 16,108 रानियों की एक एक कन्या भी थी, पुत्री भी थी, उनका भी विवाह कराना है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए क्या कठिन है, परम भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है, योग्य वर योग्य कोई बहू सब मिल गए। और रुक्मिणी देवी के भाई का नाम था रुक्मिणी। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था तो रुक्मिणी तो अवश्य चाहती थी कि श्री कृष्ण मेरे पति बने। रुक्मिणी देवी के पिता भीष्मक राजा वो भी चाहते थे, लेकिन भीष्मक राजा के पुत्र रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी श्री कृष्ण से घृणा करते थे, द्वेष करते थे। वो सोच रहे थे कि रुक्मिणी का कोई पति बने तो केवल मेरा मित्र शिशुपाल, कृष्ण को अवश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर कृष्ण बद्ध हुए रुक्मिणी का हरण करने के लिए। रुक्मिणी देवी ने पत्र भेजा था श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के द्वारा कि मुझे आप यहाँ से ले जाइए। तो रुक्मिणी और कृष्ण के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और रुक्मिणी सोच रहे थे कि कृष्ण मेरा शत्रु है। वास्तव में कृष्ण किसी के शत्रु नहीं है, वो तो भगवान है। गीता में तो वो घोषणा करते ही है कि हृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम् ऋच्छति, जो ये जान लेता है
कि मैं सारे प्राणियों का सुहृद हूँ, शुभ चिंतक हूँ, हितैषी हूँ, वही एकमात्र शांति को प्राप्त कर सकता है। जो लोग सोचेंगे कि श्री कृष्ण मेरा शत्रु है, जैसे कि शिशुपाल सोच रहे थे, जैसे रुक्मी दुर्योधन, इनको तो दुर्गति ही होनी है, कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे ये लोग। लेकिन फिर भी रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करते थे, परंतु अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे रुक्मिणी से। तो फिर अपने बहन को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने सोचा कि मेरी जो पुत्री है, कन्या है रुक्मवती, इसका विवाह रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से होना चाहिए। और ये विवाह हो भी गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। हालांकि रुक्मी के हृदय में कृष्ण के प्रति द्वेष था। और फिर प्रद्युम्न और रुक्मवती का एक पुत्र हुआ। वैसे कई पुत्र हुए, उनमें से प्रमुख वरिष्ठ पुत्र अनिरुद्ध। तो जब अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध की को युवावस्था की प्राप्ति हो गई, तो रुक्मी और आगे सोचने लगे कि मेरी एक पौत्री है रोचना, अब रोचना का विवाह भी अनिरुद्ध से किया जाए। तो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी बड़े प्रसन्न हुए, प्रद्युम्न जो कि पिता थे वो भी प्रसन्न हुए। तो फिर उस समय जो रुक्मी की राजधानी थी वहां पर सब चले, द्वारका के सारे निवासी कृष्ण भगवान, रुक्मिणी देवी, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि सारे बड़े पार्टी में चले, शादी की पार्टी। और फिर चले, पहुंच गए और वहां पर उत्सव हुआ, शादी बड़े धूमधाम से हो गई। लेकिन जैसे कि होता है शादी के समय, जब सारे रिश्तेदार आते हैं इत्यादि, बहुत अनुष्ठान रहते हैं और खेल खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। और उस समय अन्य राजा लोग भी आए थे उस विवाह के अनुष्ठान के लिए, और इनमें से ये सारे रुक्मी के साथी थे। तो जैसा संग वैसा रंग, तो ये सारे लोग कृष्ण से द्वेष करते थे। तो उन्होंने रुक्मी को भड़काया और वो कहने लगे कि अरे रुक्मी राजा, आप तो इतने बड़े शूरवीर हैं, ये यदुवंश के लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करना, आप जुआ बड़े अच्छी तरह से खेल सकते हो, इसलिए बलराम जी को आप निमंत्रण दे दो। बलराम जी खेलना नहीं जानते ठीक से, लेकिन पसंद करते हैं खेलना, इसलिए उनको निमंत्रण दे दो और उनको हराओ और उनको ठीक अपना स्थान क्या है वो सिखा देना, क्योंकि यदुवंश के लोगों ने आपका अपमान किया है, उसका बदला अभी आप अच्छी तरह से ले सकते हो। आपका काम हो गया, पौत्री का विवाह तो हो गया। वैसे क्षत्रिय को जब ललकारा जाता है युद्ध में या तो जुए के लिए, वो नकार नहीं सकता है। तो जब बलराम जी को रुक्मिणी ने कहा कि चलो जुआ खेलते हैं, तो बलराम जी ने कहा ठीक है चलो, तो खेल में बैठ गए। उधर पहले 100 सोने के सिक्के का ऊपर जुआ हुआ और उसके बाद में 1000, फिर 10,000 और फिर बलराम जी हारते गए। और उसके बाद में 10 करोड़ सोने के सिक्के का सौदा लगाया गया और इस बार बलराम जीत गए। लेकिन रुक्मी वो तो धोखेबाज थे, शिशुपाल रुक्मिणी एक तरह के थे, तो कुछ छल कपट करके कहा नहीं नहीं मैं जीत गया, मैं जीत गया। बलराम को बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने आप को रोक दिया। आंख धीरे धीरे से लाल होते जा रहे थे बलराम जी के, तो क्रोध भी बहुत जल्दी आता था बलराम जी के। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा ठीक है, और ज्यादा बड़ा सौदा किया। और उस समय भी बलराम जी जीत गए और उस समय भी रुक्मी ने कहा नहीं नहीं मैं जीता। और देखो यहाँ इतने सारे साक्षी हैं, इनको पूछो। साक्षी तो क्या, सब रुक्मी के मित्र ही थे और उनमें से एक थे राजा कलिंग देश के राजा थे। और कलिंग देश के राजा ये बहुत द्वेष करते थे बलराम से। तो जब पहली बार बलराम हार गए थे, तो कलिंग देश के राजा ने बहुत जोर से वो हंस लिए और अपने सारे दांत दिखाए। तो उनके सारे दांत देखने के बाद बलराम को क्रोध आया, लेकिन अपने आप को रोक लिया उन्होंने। और जब 2 बार ऐसे हुआ कि वो जीत गए लेकिन रुक्मी बोल रहे कि मैं तुम हार गए, उस समय बलराम सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। उस समय अचानक एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे रुक्मी, बलराम जीत गए हैं, तुम हार गए हो। इसलिए छल कपट नहीं करना, धोखेबाजी नहीं करना। लेकिन हालांकि आकाशवाणी आई, फिर भी रुक्मी ने कोई परवाह नहीं की और फिर बड़े क्रोधित होकर अहंकार की भावना से वो बलराम को बोलने लगे कि अरे तुम लोग तो ग्वाल बाल हो, ग्वाले हो तुम लोग। तुम लोग क्षत्रियों के रहन सहन के बारे में क्या जानते हो? ये तीर चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना और जुआ खेलना, ये तो हम क्षत्रियों का काम है। और तुम गाय चराने की बात करते हो तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे साथ में आकर तुम जुआ खेलते हो, फिर भी कहते हो कि जीत गए। और तो जोर जोर से सभी अन्य जो रुक्मी के साथी थे वो हंसने लगे और कलिंग देश के राजा ने फिर से दांत दिखाकर हंसना शुरू कर दिया। तो इस बार बलराम जी को रहा नहीं गया, तो बलराम जी ने बिना एक शब्द कहे अपना धड़ा उठा दिया और सीधे रुक्मी के सर के ऊपर प्रहार कर दिया और रुक्मी वहीं के वहीं मर गए। और फिर पहले जब ये देखा तो कलिंग देश के राजा घबरा गया, तो अब मेरी बारी आई। तो कलिंग देश के राजा वहां से जल्दी भाग गया, लेकिन बलराम जी उसे तेज भाग सकते हैं, तो 10 कदम रखकर फिर उनको पकड़ लिया और सबसे पहले वो सारे के सारे दांत तोड़ दिए। जिन दांतों से वो हंसे थे बलराम जी के ऊपर, एक भी दांत नहीं रखे। और फिर जो भी उनके साथी थे अपना दगा लेकर ऐसे प्रहार किया कि किसी के हड्डी टूट गए, किसी के क्या टूट गया, इतना खून बहने लगा और सब भाग गए, कोई बलराम जी के सामने नहीं आ सके। जैसे जैसे हो सकता था वो सब उधर से भाग गए। इस तरह से बलराम जी फिर भी क्रोध में थे और कृष्ण भगवान ये सब देख रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने न तो बलराम जी की प्रशंसा की और न ही निंदा की, क्योंकि कृष्ण भगवान बड़े अजीब समस्या में पड़ गए। अगर वो निंदा करते तो बलराम जी नाराज हो जाते, रुक्मी देवी खुश हो जाती। अगर वो बलराम जी की प्रशंसा करते तो क्या होता, तो रुक्मी देवी नाराज हो जाती और बलराम जी प्रसन्न हो जाते। तो किसको प्रसन्न करना, किसको नाराज करना, एक ओर है पत्नी, दूसरी ओर है बड़े भाई, तो क्या किया जाए? अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे पारिवारिक समस्या होती रहती है सारे हमारे साधारण समाज में भी। तो बलराम जी भी मनुष्य समाज में लीला कर रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ में। तो कृष्ण भगवान भी सोचने लगे मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं चुप रहूं। इसलिए श्री कृष्ण कुछ बोला नहीं, चुपचाप रह गए और इस प्रकार की लीला समाप्त हुई। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं बलराम जी भी करते रहे। श्रीमद भागवत में, महाभारत में इत्यादि ऐसी कई सुंदर सुंदर लीलाएं दिखने में आते हैं। वैसे बलराम जी जब वृंदावन लौट कर गए थे तो यमुना जी ने रमन करने के लिए जब अपने गोपियों के साथ में थे और यमुना जी ने नकार दिया, तो उन्होंने अपने हल को लिया और हल के अग्रभाग से यमुना देवी के छोटे छोटे नदियां कर दी। और इसी बात को जयदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, ये भजन जो हमने थोड़ी देर पहले प्रवचन के पहले गाया था, वह शिव पुष देव सनम जलदाभम हल हित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति वहसि वपुषे विषदे वसनम जलदाभम। बलराम जी कपड़े नील रंग के पहनते थे और उनके शरीर की कांति बिल्कुल यमुना जी के जल की तरह सफेद थी, लेकिन उनके हल के द्वारा उन्होंने यमुना जी को बहुत कष्ट में डाल दिया। और फिर यमुना जी आके उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, कृपा याचना करने लगी कि मैं आपको समझ नहीं पाई, इसलिए मेरे मूर्खता को कृपा आप क्षमा कर दीजिए, अभी आइंदा ऐसे नहीं होगा। और आपके आनंद के लिए, आपके विहार के लिए सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए बलराम जी अपना हल का प्रयोग ऐसे भी किया करते थे। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे कई सुंदर सुंदर लीला बलराम जी के बारे में, कृष्ण के बारे में हैं। और कल से सुबह को कृष्ण लीला का वर्णन होगा। हर साल बलराम जयंती और जन्माष्टमी के बीच में जो 7-8 दिन होते हैं, इनमें सुबह को कृष्ण लीला का वर्णन होता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से। पिछले साल ब्रह्म विमोहन लीला पर बात कथा समाप्त हुई थी और कल से गोचारण लीला से, अर्थात ब्रह्म विमोहन लीला से कथा शुरू होगी, जिस समय कृष्ण और बलराम गायों को चराना जब इन्होंने आरंभ किया। पहले वत्सों को चराते थे, बछड़ों को, और आगे चल के सौगंध अवस्था की प्राप्ति पर फिर वो गायों को चराने लगे। तो ये गौचारण लीला और उसके बाद कालिया दमन लीला, ये दोनों एक हफ्ते में रोज सुबह चर्चा होगी। और इनमें बलराम जी का भी बहुत महत्व स्थान है, दोनों गौचारण लीला में भी और कालिया दमन लीला में। तो आपका निमंत्रण है, आप आकर कृष्ण और बलराम और उनके भक्तों के बारे में श्रीमद् भागवत से सुन सकते हैं। तो आज हमें बलराम जी की कृपा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उनसे आध्यात्मिक बल मिलता है। तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, जो यहाँ जगन्नाथ जी सुभद्रा जी के साथ में विराजे हैं हमारे मंदिर में, राधा गोकुलानंद मंदिर में, कि कृपा करके माया के परे होने के लिए, माया के आक्रमण से बचने के लिए आप मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए, ऐसा बल दीजिए, ऐसी श्रद्धा निष्ठा दीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कभी छोड़ू नहीं और मैं भक्ति मार्ग में प्रगति करते रहूं, और ये मेरा आखिरी जन्म इस भौतिक संसार में हो, पुनर्जन्म न हो, केवल भगवान के चरण कमलों में एक रज की धूली बनकर हम रहें हमेशा के लिए। ऐसी प्रार्थना अगर बलराम जी के चरण कमलों में किया जाए तो बलराम जी जो कि बड़े कृपालु हैं, अवश्य हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे और फिर हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। श्री बलराम जी की, श्री कृष्ण बलराम की, बलराम जयंती महोत्सव की। तो अब
जब पिताजी जब ब्रह्मदर के पास गए थे तो एकदम वैसे देवी कहाँ से थी, वो कहते रहे ब्रह्मदेव ने उनको बताया, रवती देवी के जो पिताजी थे उनको बताया ब्रह्मदेव ने कि आपके बहुत सारे अंश दे चुके हैं, तो उस समय रवती देवी कहाँ से थी।
रवती देवी को लेकर गए थे राजा टुकुज में दिखाने के लिए, ये मेरी बेटी है, इसके लिए अच्छा कोई वर ढूंढो। तो रेवती देवी भी उनके साथ में गई थी। इसका संबंध भी बलराम जी के हल से ही है, इसलिए उनको हलधर या हलायुध कहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि यहाँ भी शादी की बात आती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लड़के लड़कियां जिनकी जन्म लिया द्वारका में, उनकी शादी तो करानी थी ना। तो ऐसे हुआ कि कृष्ण की एक रानी थी जिनका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती या जाम्बवान की पुत्री थी। जाम्बवान आपको मालूम है रामलीला में भी आए, राम प्रभु रामचंद्र के सेना में भी थे वो। तो जाम्बवती और श्री कृष्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम था सांब। सांब नाम इसलिए आया क्योंकि वो अपने माता के पास हमेशा बचपन में रहा करता था। अम्बा, अम्बा मतलब माँ, सा मतलब पास में, तो जो हमेशा अपने माँ के पास रहता था, माँ के संग नहीं छोड़ता था, इसलिए वो बच्चे का नाम हो गया स अम्बा अर्थात सांब। हे बड़े शूरवीर, बड़े होकर शूरवीर बिल्कुल क्षत्रिय बन गए। एक बार हस्तिनापुर में स्वयंवर की आयोजना की गई। किसकी स्वयंवर? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। उस समय धृतराष्ट्र ने पांडवों को और कौरवों को अलग अलग राज्य दिए थे 50%। हस्तिनापुर में कौरव राज कर रहे थे और पांडव इंद्रप्रस्थ में थे,
उनकी नई राजधानी अलग राज्य था। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर हुआ तो जगह जगह से राजकुमार आए, उनमें से सांब भी था। तो सांब वहां आए, सांब ने देखा कि मुझे तो लक्ष्मणा से ही विवाह करना है, तो राक्षस पद्धति से वो उठाकर ले गए इन सारे योद्धाओं के बीच में इन सबको, और उठाकर ले गए। और उधर जो लक्ष्मणा है वो विवाह नहीं करना चाहती थी सांब से, लेकिन एक बार उठाकर ले गए तो लक्ष्मणा तो कुछ नहीं कर सकी। उधर सारे जो कुरुवंश के लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया है, हमारे दरबार से ही इस दुर्विनीत बालक ने ऐसा कार्य किया, इसको तो ऐसे सबक सिखाना, बहुत ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आगे ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। तो सलाह मशवरा हुई वहां पे कौरवों के दरबार में, और फिर जो वृद्ध थे बुजुर्ग थे उनकी सलाह से पांच छह कौरव के सैनिक जो सेनापति थे कर्ण इत्यादि शाल्य ये सब तैयार हुए, अपने अपने रथ पे घोड़ों पर सवार होकर वो सांब का पीछा करने लगे। अब आचार्य बताते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या सलाह दी। भीष्म ने कहा कि देखो अभी क्योंकि सांब ने स्पर्श किया है लक्ष्मणा का, उठाकर ले गया है, इसलिए लक्ष्मणा अभी और किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती है। तो विवाह तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सांब को पकड़ लेना चाहिए, सांब को पराजित करना चाहिए युद्ध में, क्योंकि हमें यह बताना चाहिए कि जिस पद्धति से सांब ने यह किया है वो उचित नहीं था, ठीक नहीं था। और हमें यह भी दिखाना चाहिए कि वास्तव में इस तरह से जो कुरुवंश है उनसे कोई खेल नहीं कर सकता, कुरुवंश का अपमान नहीं कर सकता। तो ये एक केवल मर्यादा और मान का प्रश्न है, विवाह तो उसका होना ही है क्योंकि स्पर्श तो हो चुका है, और कोई विवाह नहीं करेगा तो लक्ष्मणा से। तो फिर ये छह योद्धा अपने अपने रथ पर पीछा सांब का करने लगे, और दूर से सांब को कहने लगे अब रुक जाओ युद्ध करो, कहां भागे जा रहे हो। तो सांब भी प्रामाणिक क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय को कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाना चाहिए, तुरंत वहीं के लड़ गए और फिर पीछा पीछे मुड़कर फिर इन योद्धाओं का सामना करने लगे। और ऐसे युद्ध किया सांब ने कि इन छह जो सैनिक योद्धा थे इनके घोड़े मर गए, इनके जो सारथी मर गए, और ये बेरथ रह गए। और उन्हें सब ने वाह वाह करना शुरू कर दिया कि वाह सांब कितना शूरवीर है। तो ये क्षत्रिय की एक मर्यादा पद्धति होती थी कि अपना शत्रु भी अगर बहुत शूरवीरता से लड़े तो वाहवाकार किया जाता था। महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं ऐसे ही हुआ करता था। तो खैर अंततः ये छह योद्धा थे और सांब अकेले थे, और सांब तो केवल राजकुमार थे, युवक थे, और ये छह जो थे बड़े निपुण प्रवीण अनुभवी योद्धा थे, इसलिए बहुत कठिनाई से किसी न किसी तरह से सांब के सारे घोड़ों को खत्म कर दिया, सारथी को मार दिया, और फिर सांब के सारे जो अस्त्र थे उनको भी भंग कर दिया, और उस सांब को बांध कर फिर से कुरु दरबार में ले आए। और वो कहने लगे कि ये कुरु वंश के लोग हैं, इनकी ये मजाल कि इन्होंने ऐसे किया है, हमें उनको सिखाना चाहिए कि वास्तव में कुरु वंश से खेलने का क्या मतलब होता है, अगर वो यहां कोई आए तो फिर हम उनको सिखाएंगे। अभी जब सांब गिरफ्तार हो गए और यदुकुल के कोई सदस्य जहां सांब के साथ आए नहीं थे तो खबर कैसे पहुंची द्वारका, लेकिन ऐसे खबर क्योंकि कृष्ण लीला में है तो पहुंच ही जाते हैं। किसने पहुंचाए, नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि तो इधर उधर घूमते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला में कैसे और स्वाद को बढ़ाना है, इसलिए नारद मुनि हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो नारद मुनि सबसे पहले चले गए आकाश पथ से, उनको घोड़े इनके लिए घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई भारतीय रेल की आवश्यकता है, वो तो आकाश पथ से ही चलते हैं। तो आए द्वारका में और सुधर्मा सभागृह में घोषणा उन्होंने की,
और राजा उग्रसेन और अन्य जो यदुवंश के क्षत्रिय थे उन्होंने कहने लगे कि अरे हे मजालिम की अधर्म का पथ स्वीकार किया है सारे कुरुवंश ने, हे लोग और हमारा साम अकेला, तो चलो हमें जाना चाहिए। बड़े क्रोधित हो गए सभी लोग कि आज का आज कुरुवंश को हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन बहुत कठिनाई से किसी न किसी तरह बलराम ने उनको शांत कर दिया और बलराम जी कहने लगे ठीक है वो हमारे रिश्तेदार ही हैं आखिर, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं आगे जाता हूँ थोड़े ब्राह्मणों को और बुजुर्गों को साथ में लेकर और फिर जाके कुछ समझौता कर लेता हूँ उनसे। अभी हिंसा कपट युद्ध कपट हमें अपनाना नहीं चाहिए। तो सबने कहा ठीक है। युवक जो थे वहां गर्म खून के, उन्होंने तो उनको अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी बलराम जी की बात को नकार नहीं सकते थे, तो कहा ठीक है। तो बलराम जी फिर गए और जब हस्तिनापुर के बाहर पहुंचे तो एक उद्यान में उन्होंने विश्राम किया और उद्धव को आगे भेजा और कहा उद्धव जाके संदेश पहुंचा दो कि हम आ गए हैं। वो तो जानना चाहते थे कि अब धृतराष्ट्र के और अन्य लोगों के मन में क्या बीत रहा है, वो तो कैसे स्वागत करेंगे उनका। तो उद्धव जब गए तो सभी लोग वहां बहुत खुश हुए उद्धव को देखकर और ये सुनकर कि बलराम जी बाहर खड़े हैं शहर के। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन सभी खुश हुए। आखिर दुर्योधन के गदायुद्ध में गुरु थे बलराम जी। तो इस प्रकार से खुश होकर सभी लोग शहर के बाहर आए। बलराम जी की बहुत अच्छी तरह से स्वागत की उन्होंने, पाद पूजा की, अर्घ्य, गाय इत्यादि दान में दिए, मीठे शब्द बोले। बलराम जी ने भी मीठे शब्द बोले, एक दूसरे के बारे में पूछताछ किया, रिश्तेदारों के बारे में, सब ठीक ठाक कुशल मंगल तो है ना। ये मर्यादा है कि मिलते मिलते ही काम की बात नहीं होनी चाहिए, मिलते मिलते थोड़ी दो चार मीठी बातें भी होनी चाहिए फिर काम की बात है, ऐसे पद्धति है। तो फिर बलराम जी ने सोचा कि चलो अभी काम की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजा उग्रसेन आराध्य हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से क्या संदेश है, कृपा करके बड़े एकाग्र चित्त से आप श्रवण कीजिए। तो राजा उग्रसेन का संदेश था कि आप सब ने अधर्म का पथ स्वीकार करके हमारे अकेले सांब को हरा दिया है और पकड़ लिया है, और मैं और हम सब ये केवल इसलिए सहन कर रहे हैं कि आप सब हमारे रिश्तेदार हैं और हम एक ही कुटुंब में युद्ध नहीं करना चाहते हैं। बस इतना ही संदेश। ये संदेश का मतलब साफ था। क्या था संदेश? कि आपने अधर्म का पथ स्वीकार करके सांब को बंद कर रखा है, आप तुरंत छोड़ दो और लक्ष्मणा के साथ सांब को वापस आने दो, नहीं तो। यह संदेश था, छिपा हुआ था। तो जब बलराम जी ने यह पढ़ लिया तो कौरव जो वहां कुरुवंश के लोग थे उनको बड़ा आया गुस्सा कि अरे देखो तो सही, काल की चाल, काल के प्रभाव से क्या नहीं होता है ये संसार में। नीचे जूते, नीचे पैरों में पहनने वाले ये जूते हैं आज ऐसे सर पर बैठ रहे हैं जिस सर पर सोने का मुकुट है। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहते थे कि कुरुवंश मुकुट के बराबर है, सिर के बराबर है, और यदुवंश जूते के बराबर है। और कहने लगे केवल हमारी कृपा से ये यदुवंश के लोगों को थोड़ा थोड़ी जमीन मिली है, वो राज कर पा रहे हैं, और वैसे हम तो विश्व सम्राट हैं, हम वास्तव में राजा हैं, और इन लोगों को हमने बस सहन किया है, हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे साथ से उनका खाना पीना उठना बैठना होता था केवल इसलिए कि वो हमारे रिश्तेदार थे, नहीं तो इनका कोई अधिकार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है राज सिंहासन पर बैठना, हमारे साथ में एक जगह बैठकर खाना पीना बात करना रहना सोना। और देखो तो सही, उस राजगति पर बैठकर इनके विचार कैसे बदल गए हैं, क्या इंद्र ने कभी साहस किया है कुरुवंश के द्रोण भीष्म इत्यादि के होते हुए यहां आकर यहां हमारी चीज को छीन लेना। जब स्वयं इंद्र गए कि ये मजाल नहीं है तो फिर यदुवंश अपने आप को क्या समझते हैं।
तो ऐसी बातें करने लगे और फिर तुरंत ये कुरुवंश के लोग तीर घुमाकर चले गए। उधर बलराम जी को आया बड़ा क्रोध, कहने लगे ये मूर्ख कुरुवंश के लोग, वहां मैं कितने कठिनाई से यदुवंश के शूरवीरों को मैं रोक पाया, वो तो युद्ध के लिए तुले थे और अगर ये शूरवीर यहाँ आ जाते तो कुरुवंश एक क्षण में खत्म हो जाता, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने तो उनको रोक दिया। लेकिन ये इस बात को सोचते नहीं है और राजगति पर बैठकर इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि इनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। राजा उग्रसेन उनके वो तो इंद्र और सारे जो देवता हैं भी उनके आदेश का पालन करते हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि उग्रसेन राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। और उधर श्री कृष्ण ने तो साक्षात इंद्रदेव की राजधानी अमरावती में जाकर वहां के पारिजात वृक्ष उखाड़ कर ले आए हैं और इंद्र को हरा दिया अपनी राजधानी में। और ऐसे श्री कृष्ण राजगति पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। ये श्री कृष्ण जिनके चरण कमल के धूलि को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी बड़े बड़े देवी देवता आते हैं और आतुर हैं, और ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम शक्ति हैं, मनुष्य लीला में एक साधारण राजा की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए योग्य नहीं है। क्या हम जूते के बराबर हैं और कौरव सोने के मुकुट के बराबर हैं? तो इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो बलराम जी ने अपने हल को पुकारा। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जब किसी असुर का वध करना चाहते हैं तो अपने सुदर्शन को पुकारते हैं मतलब सोचते हैं, क्योंकि भगवान के सोचने में और बोलने में और करने में कोई अंतर नहीं है। हमारे सोचने बोलने करने में बहुत अंतर है। हम सोच सकते हैं मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बन जाएंगे। हम बोल भी सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति, मैं बनूंगा करोड़पति, लेकिन करना है तो अलग बात हो जाती है। करने में इतने आसान नहीं है करोड़पति बनना, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविक तौर से ज्ञान बल क्रिया शक्ति उनमें है, विद्यमान है। केवल इच्छा करने मात्र से वो कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण सोचते हैं सुदर्शन तुरंत उनकी उंगली पर हाजिर हो जाती है। तो बलराम जी ने सोचा हल को होना चाहिए मेरे साथ में, हल उपस्थित हुआ और बलराम जी की इच्छा से हल बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हुआ। और फिर जिस तरह से उन्होंने यमुनाकर्षण लीला की थी उसी प्रकार अब बलराम जी ने क्या किया, कहा कि इन सारे यदुवंशों को मैं समाप्त कर दूंगा, इन कुरुवंश को। अपने हल का अग्रभाग लेकर उन्होंने पृथ्वी में खोद डाला और खोद कर खींचना आरंभ किया, और जब खींचा तो ऐसे लगा कि हस्तिनापुर में भीषण भूकंप हो गया और हस्तिनापुर सारे पृथ्वी से ही अलग हो गया और गंगा जी की ओर और यमुना जी की ओर आ गया। गंगा जी की ओर क्षमा कीजिए। तो उस समय बलराम जी ने गंगा जी से कहा कि मैं हस्तिनापुर को नीचे ले आ रहा हूं तुम्हारे जल में, तो सांब के अलावा सभी को मार डालना, सब लोग डूबने चाहिए केवल सांब बचना चाहिए। और खींचने लगे बलराम जी अपने हल से, और उधर हस्तिनापुर में क्या दशा हुई हम तो कल्पना कर सकते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि छोटा सा नौका समुद्र के बीच में तूफान के समय में हो। क्या हालत है वैसे छोटे से नौके की, जब तूफान कोई चल रहा हो और छोटा सा नौका है उसमें दो चार छह आदमी बैठे हैं, उनकी क्या दशा होगी? वैसे ही दशा हुई हस्तिनापुर में सारे कुरुवंश के लोगों की। ऐसे लग रहा था कि छोटा नौका है अभी जल में ही प्रवेश करने वाला है। त्राही त्राही मचाकर सब लोग बलराम जी के पास आए, बचाइए बचाइए, क्षमा याचना कीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई हमारी, हम आपको पहचान नहीं पाए, क्षमा याचना कीजिए। तो उस समय जब कौरव आए कुरुवंश तो उन्होंने क्या किया, बड़े चतुराई से उन्होंने सांब और लक्ष्मणा को आगे रख दिया
आप आगे आगे जाओ ताकि आप दोनों को देखकर फिर बलराम जी का क्रोध जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बलराम जी ने सांब और लक्ष्मणा को देखा सुरक्षित और साथ में, तो वो भी थोड़े शांत हो गए। और कुरुवंश इन्होंने जब प्रार्थना की उनसे तो फिर तो बलराम जी थोड़े शांत हो गए। वास्तव में आचार्य समझाते हैं कि ये क्षत्रियों में ऐसे अक्सर हुआ करता था, कोई भी शादी हो कुछ युद्ध तो होना ही होना है, एक 200-400 लोगों की हत्या तो होनी ही होनी है, ये उनका अपमान करेगा वो उनकी हत्या करेगा, फिर ये कोई राक्षस में और किसी को उठा के ले जाएगा और युद्ध होगा, ये सब उनके समाज में ऐसा ही चलता था। तो खैर जो कुरुवंश है वास्तव में दुर्योधन वास्तव में बलराम जी की शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते थे और अपने ही हृदय में वो शाम को पसंद करने लगे, क्योंकि शाम ने इतने शूरवीरता से युद्ध किया कि सब लोग कहने लगे मानना पड़ेगा ऐसे वर हमारे लक्ष्मणा के लिए योग्य है। और लक्ष्मणा जी वास्तव में सोचा कि हाँ जिसने मुझे इस तरह से युद्ध करके बचा के ले लिया है वो मेरे लिए योग्य वर है। और यदुकुल के लोग भी चाहते थे तो ऐसे लीला क्षत्रिय वंश से हुआ करते थे। तो इस प्रकार से बलराम जी ने अपने युद्ध का अपने क्रोध का प्रदर्शन फिर से किया। तो बलराम जी हालांकि युद्ध को कभी पसंद नहीं करते थे, हमेशा युद्ध को रोकना चाहते थे, जैसे कि जब यदुकुल के लोग कुरुवंश को नष्ट करना चाहते थे बलराम जी ने रोक दिया। उधर जब विराट राजा के दरबार में जब अभिमन्यु का विवाह हुआ था और पांडव अपने सहायकों के संग चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए, अपना राज्य वापस कैसे लिया जाए, तो सात्यकी इत्यादि ये सब जोर से बोल रहे थे कि हमें युद्ध करना चाहिए। बलराम जी बोल रहे थे युद्ध के साथ कैसे क्या फायदा होगा, चलो अभी शांत हो जाओ, एक शांति दूत भेजो। तो हमेशा बलराम जी शांति की प्रस्तावना सामने रखते थे, लेकिन जब कोई उनको भड़का देता था तो फिर वो ऐसे हो जाते थे आप बोले कि सब सब जगह वो उत्पात खड़ा कर देते थे, क्योंकि बलराम जी तो है शक्ति के प्रतीक, मूर्तिमान शक्ति है बलराम जी। तो इस तरह से बलराम जी से हमें भौतिक शक्ति शारीरिक शक्ति नहीं मांगनी है, हमें आध्यात्मिक शक्ति मांगनी है और फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति निश्चित है। बोलो बलराम जी की, कृष्ण बलराम की, श्री बलराम जयंती महोत्सव की। अब यहाँ बलराम जयंती की विशेष आरती होगी और आप संकीर्तन में बड़े उत्साह से कृपा करके शामिल होइएगा और लाभान्वित होइए और उसके बाद में प्रसाद का सेवन करके ही आप अपने घर में जाइएगा। हरे कृष्णा।